Good morning, Diamond Hall में विराजमान आप सभी Real Diamonds का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो. हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी जी वैश्विक एकता के लिए आत्मा की पहचान, स्वयं की पहचान जो खुद खुदा ने दी है उस विषय पर संबोधन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है. आप सभी महान आत्माओं से अनुरोध है करतल ध्वनि से आप दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे. वैसे तो हम अपने पहचान के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी एक नई पहचान जो स्वयं भगवान ने दी है जिससे ही हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, ऐसा कौन सा पहचान है आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे. परमात्मा का दिव्य ज्ञान, अपने अनुभवों के आधार पर परमात्मा का दिव्य ज्ञान सुनाएंगे आदरणीय गीता दीदी जी. राजयोग शिविर का पहला कदम आपका रखवाएंगे आदरणीय दीदी जी. परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप सुनेंगे और जो नया परिचय आपको मिलेगा उस आधार पर आप हर कार्य करेंगे, क्योंकि दो दिन आप यहाँ पर रहेंगे. चलते फिरते, उठते बैठते, अपने नई पहचान के साथ कार्य करेंगे तो विशेष अनुभव आप यहाँ से प्राप्त करके जाएंगे. तो सभी प्रैक्टिस भी करेंगे और साइलेंस में भी रहेंगे. मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अंदर आने के बाद, स्पेशली डायमंड हॉल के अंदर आने के बाद साइलेंस में बैठे और बाहर भी साइलेंस में जितना रहेंगे उतना जो दीदी जी सुना रहे हैं परमात्मा का दिव्य ज्ञान उतना आपको समझ में भी आएगा और उतना अनुभव भी होगा. तो सभी रहेंगे साइलेंस में, हाथ उठाकर बताना, दीदी भी देख लेंगे. दीदी भी खुश है कि आप सभी साइलेंस में रहेंगे. दो ही दिन आपको रहना है. ये भी कौन सा लाइफस्टाइल है जो हम साइलेंस में कर सकते हैं, क्योंकि शांति वन में आए हैं तो पुण्य जमा करना है. तो जितना शांति में रहेंगे उतना पुण्य जमा होगा और जितने भी सेशंस आपका चलेगा तो टाइम पर आप सभी आएंगे. और भंडारे के तरफ से भी एक डायरेक्शन मिला है कि ज़्यादा ज़्यादा भोजन लेकर वेस्ट नहीं करना है, जितना चाहिए उतना लीजिए, फिर से ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत हो तो. ये बात भी आप ध्यान रखेंगे. और जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं ली है, हाथ उठाएं जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं ली है. जो पहले दिन ले चुके हैं वो तो हो चुका है, बाकी जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं लिया जो शिविर में आए हैं, कल सुबह क्लास के बाद आपको सौगात मिलेगी. आप याद रखेंगे और कल ही प्राप्त करेंगे अपना सौगात. और जो भी बच्चे डायमंड हॉल में बैठे हैं खड़े हो जाएं, जो भी बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे आप बैठ जाएं भाई. हाँ, जो भी बच्चे हैं आपके लिए अलग क्लास रखा गया है, आप दादी जी मीटिंग हॉल में जाइए, आपके लिए वहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन क्लास रखा हुआ है, इसलिए बच्चे सब वहाँ पर जाएंगे. तो अभी मैं आदरणीय गीता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ वैश्विक एकता के लिए स्वयं की पहचान इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, परमात्मा का दिव्य ज्ञान आपको सुनाएंगे आदरणीय गीता दीदी जी. मैं कहना चाहूँगी सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए. गीता दीदी के द्वारा स्वयं का सच्चा पहचान मिल जाए तो और क्या चाहिए. और क्या चाहिए। तो अभी हम दीदी के माध्यम से सुनेंगे परमात्मा का दिव्य ज्ञान।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। इसलिए यहाँ हर कार्य ओम शांति बोल के उसमें स्थित होके शुरू किया जाता है और ओम शांति से समाप्त होता है। आज के सत्र में हम अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करेंगे। मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा उठी कि को हम, मैं कौन हूँ। इस को हम की जिज्ञासा को प्रतिउत्तर करने के लिए विभिन्न ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने चिंतन किया, मंथन किया और इसके विविध उत्तर दिए। किसी ने कहा सो हम, शिवो हम, ब्रह्मो हम, ऐसे वैरायटी उत्तर दिए। उसका सही उत्तर क्या है वो आप सब आज जानेंगे। परमात्मा आकर के हमारा वास्तविक परिचय बताते हैं, इसलिए हर धर्म में इस बात का महत्व है कि नो थाई सेल्फ। खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। हमारे देश के कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्ज्वल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है, अंतर मम विकसित करो, वो कैसे विकसित करना है, ये विधि आज समझेंगे। हम आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं। हम अपना शारीरिक परिचय जानते हैं, इसलिए शरीर का नाम, रूप, रंग, आयु, संबंध, व्यवसाय, धर्म, भाषा, जाति की बातें करते हैं। कुछ एक कर्म में शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु के भान में हम करते हैं। मैं मिस्टर फलाना हूँ, मैं मिसिस फलानी हूँ, हम अपना नाम बताते हैं, हमें अपने रूप की कॉन्शियसनेस रहती है, विशेष करके जब हम कोई प्रसंग में जाते हैं, ड्रेसअप होते हैं, तो हमें अपने रंग रूप की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं गोरा हूँ, काला हूँ, हमें अपने रूप की, रंग की कॉन्शियसनेस रहती, हमें अपनी आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। हम ऐसा मेकअप करते हैं जो हमारी आयु दिखे ही नहीं। इसलिए बहनों को आयु पूछते नहीं है, क्योंकि वो अपने को युवान बताना चाहते हैं। इस प्रकार संबंध के अभिमान में हम रहते हैं। मैं सास हूं, मैं फलाने की बेटी हूँ, मैं इसका पति हूँ, इस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं, संबंध के अभिमान में रहते हैं। हमें अपने एजुकेशन, प्रोफेशन का अभिमान रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, व्यापारी हूँ, शिक्षक हूँ। हमें अपने प्रोफेशन का अभिमान रहता है, अपने पद प्रतिष्ठा का भी अभिमान रहता है। मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं चीफ ऑफिसर हूँ, अपने पोस्ट और पोजीशन के अभिमान में हम रहते हैं। हमें अपने धर्म का भी अभिमान रहता है। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, बौद्धिस्ट हूँ, इस प्रकार धर्म की कॉन्शियसनेस हमें रहती है। हमें अपने ज्ञाति जाति का अभिमान रहता है। मैं बनिया हूँ, ब्राह्मीण हूँ, राजपूत हूँ, इसी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। अपने ज्ञाति जाति का अभिमान रहता है, ये अगड़ी जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति के हैं, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, इस प्रकार के देहाभिमान में हम रहते हैं। भाषा की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, पंजाबी हूँ, तमिल हूँ, तेलुगु हूँ, भाषा की कॉन्शियसनेस रहती। इस प्रकार हम अपने आप को देह समझते हैं और अपना दैहिक परिचय ही एक दो को बताते हैं। हम देह अभिमान में रहते हैं, हम अपना दिन का सारा समय भी देह अभिमान में बताते हैं। प्रतिदिन के 24 घंटे का हिसाब हम करें तो 12 घंटा 50% टाइम हम देह अभिमान में नहाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। ये सोने, खाने, पीने में ही अपना टाइम व्यतीत होता है। 12 घंटा मीन्स 50% टाइम दिन का खाने पीने सोने नहाने धोने में ही खर्च होता है। बाकी के 8-10 घंटे हमारे नौकरी धंधा करने में, और बहनों में भी आजकल नौकरी करने लगे हैं, दूर स्थान है तो आने जाने में 8-10 घंटे हमारे नौकरी धंधे में खर्च होते हैं। इधर बहनें भी घर का काम करती हैं, अगर उसका भी हिसाब लगाएं, हर काम के लिए नौकर रखें, तो हम कितना बहनें भी कमाती हैं, परिवार के लिए खर्च करती हैं। अब बाकी रहे 2-4 घंटे, वो भी पारिवारिक सामाजिक कार्यों में, टीवी रेडियो मोबाइल के पीछे हमारा समय खर्च होता है। तो ये इस प्रकार हमारी दिनचर्या ही बताती है कि हम देहभान में रहते हैं, देहभिमान में जीते हैं, मीन्स हम पूरा ही देह अभिमान युक्त और सांसारिक बन गए हैं। हम देखें हमारा जीवन भोगवादी और भौतिकवादी बन गया है। अगर हम एक क्षण शांत रहकर अपने आप में सोचे कि क्या मैं शरीर हूं, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर भान में रहते हैं, तो वास्तव में क्या हम शरीर हैं? हम जानते भी हैं, मेडिकल साइंस में पढ़ते भी हैं कि वास्तव में हमारा शरीर क्या है। शरीर चमड़ी लहू हड्डी मांस का बना हुआ एक ढांचा है। विज्ञान ने बता दिया है। अगर विज्ञान की भाषा में हम कहें तो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। प्रकृति के 5 तत्व हैं पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। ये संसार भी इन्हीं 5 तत्वों का बना है और हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है जब किसी की डेथ होती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर छोड़ते हैं, तो संस्कृत में कहा जाता है पंचत्वम गतः। 5 तत्वों का बना शरीर पुनः 5 तत्व में मिल गया। आम भाषा में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो हम 5 तत्व नहीं है, मिट्टी नहीं है, हम प्रकृति से अलग चैतन्य शक्ति हैं। जब हम मनुष्यात्मा ह्यूमन बीइंग जीवात्मा शब्द कहते हैं तो शरीर प्लस आत्मा को कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग सोल मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मानव शरीर के लिए हम जानते हैं क्योंकि शरीर स्थूल है, इन आँखों से दिखाई देता है। शरीर के बारे में हम जानते हैं कि शरीर हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक जड़ पुतला है। शरीर को धारण करने वाली चलाने वाली चैतन्य शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते हैं जान सकते हैं। जब शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाती है तो हम कहते हैं कि लाइट हैज गॉन, ज्योति बुझ गई, दीवा बुझ गया। और हम तुरंत ही जैसे ही चैतन्य शक्ति आत्मा निकल जाती है उस डेड बॉडी के आगे दीवा जला के रख देते हैं। अब दीवे के स्थूल प्रकाश से आत्मा को कोई रास्ता नहीं मिलता है, पर स्वयं ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना रास्ता देख लेती है। तो शरीर प्लस आत्मा मिलाकर जीवात्मा मनुष्यात्मा कहा जाता है। तो शरीर माना भौतिक शक्ति, हम देखते हैं कि भौतिक शक्ति क्या है। भौतिक शक्ति दिखाई नहीं देती है। देखो ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, ये ट्यूब लाइट दे रही है। हम पंखा देख रहे हैं, हम हीटर देख रहे हैं, हम कहते हैं कि पंखा घूम रहा है, हीटर गर्मी दे रहा है, ये ट्यूब लाइट दे रही है, बल्ब प्रकाश दे रहा है। परंतु वास्तव में बिजली की शक्ति ही सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो ही बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, ट्यूब के द्वारा लाइट के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में और पंखे के द्वारा शक्ति के रूप में, घूमने की शक्ति बिजली है, घूमने के रूप में हम ये बिजली की शक्ति काम करती है। बिजली दिखाई नहीं देती है, पर बिजली की शक्ति ही गर्मी प्रकाश शक्ति के रूप में अनुभव होती है। तो ये शरीर भौतिक शक्ति है। अब चैतन्य शक्ति क्या है? चैतन्य शक्ति अति सूक्ष्म है, उनको हम देख नहीं सकते हैं, परंतु चैतन्य शक्ति ही हम सोचते हैं, निर्णय करते हैं, हमें इच्छाएं होती हैं, स्मृति रहती है, हम कर्म करते हैं, अनुभव होता है। इस प्रकार से चैतन्य शक्ति अनुभव होती है। देखो, हमें इच्छाएं होती हैं, कोई स्वादिष्ट व्यंजन मिठाई खाते हैं, हमने खाके मिठाई पूरी कर ली, मुख में वो मिठाई नहीं है, परंतु फिर खाने की इच्छा किसको होती है? चैतन्य शक्ति आत्मा को होती है। कोई सुंदर स्थान पर हम जाते हैं, वो देखकर घर वापिस आ जाते हैं, परंतु उस स्थान की सुंदरता हमें फिर बुद्धि में याद आती है, फिर देखने की इच्छा होती है। वो किसको होती है? चैतन्य शक्ति आत्मा को। हम कर्म करते हैं, कर्म तो शरीर द्वारा, हाथ द्वारा करते हैं, पर कर्म कराने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। हम कहते हैं पेशेंट को बहुत सीरियस है, जल्दी जल्दी उसको एडमिट करो, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन फेल हुआ, वापस लाए डेड बॉडी को। अब पेशेंट और डेड बॉडी में क्या फर्क है, क्या अंतर है? चैतन्य शक्ति आत्मा निकल गई, तब हम कहते हैं डेड बॉडी। यही ऑर्गन्स इस शरीर में काम नहीं करते हैं। डेड बॉडी को इसलिए वैरायटी ऑर्गन्स हम दान करते हैं, क्योंकि वो ही ऑर्गन्स दूसरे शरीर में, जिसमें चैतन्य शक्ति है, उसमें वो काम करते हैं। यहाँ डेड बॉडी कहा जाता है, बॉडी डेड हो गई। तो इस प्रकार सोचना, निर्णय करना, कर्म करना, कर्म का प्रभाव संस्कार के रूप में संचित होना, हमें इच्छाएं होती है, स्मृति रहती है, हमें सहानुभूति होती है, ये सब चैतन्यता की निशानी है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का स्वयं के बारे में प्रथम सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। ये प्रथम सत्य स्वयं के बारे में हमें यही समझना है कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा मस्तक में स्थित होकर पूरे शरीर का संचालन करती है। जैसे ही आत्मा सोचती है, ब्रेन में कंपन या वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और वो वाइब्रेशन जो कर्मेंद्रियों को पहुंचते हैं और हम शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं, आत्मा अपने संस्कार अनुसार करती है। इस प्रकार अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चमकता हुआ चैतन्य सितारा हम हैं। वो सितारे तो बहुत दूर आसमान में हैं, परंतु धरती के सितारे हम न्यारी प्यारी आत्माएं हैं। आत्मा मस्तक में स्थित होकर, जिसका सरफेस पॉइंट ये ब्रुकुटी है, इसलिए हम कहते हैं ब्रुकुटी में तिलक करो। हम धार्मिक कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको तिलक करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल मान्यता सब आत्माओं को तिलक करने की है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, बिंदु ही अति सूक्ष्म है, न कि ट्राइंगल, स्क्वायर, षटकोण, अष्टकोण सूक्ष्म नहीं है। इसलिए अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हम आत्मा हैं, जो मस्तक में स्थित होकर शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराती हैं। मस्तक को हम ऑफिस शरीर की कहते हैं। शरीर की मेन ऑफिस ब्रेन है। आत्मा चुकी चैतन्य शक्ति मेन ऑफिसर है, मेन कंट्रोलर है, इसलिए आत्मा मस्तक के बीच ठहरती है, रहती है। प्यूट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा रहती है। मस्तक का ये सरफेस पॉइंट जिसको हम ब्रुकुटी कहते हैं। अब हम शरीर और आत्मा के बीच तुलना करते हैं। बीचों बीच चित्र में दिखाया है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, इस देह अभिमान में रहते हैं। घर घर के अंदर स्त्री पुरुष का, बेटा बेटी की, बेटी और दामाद की, कितना हम भेदभाव रखते हैं। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल बॉडी या मेल बॉडी। शरीर को हम समझते हैं, इसलिए इतने भेदभाव घर घर में रखते हैं। अब हमें समझना है कि स्त्री शरीर को धारण करने वाली, पुरुष शरीर को धारण करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा भाई भाई है। हम कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, पर इससे कोई भाईचारा तो होता नहीं है, आता नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस लेवल से हमारा लिंग, जाति, नाम, कर्म सब कुछ अलग अलग है। इसलिए ये बॉडी कॉन्शियस लेवल पर वैश्विक एकता नहीं आ सकती है। हमें सोल कॉन्शियस बनना है, खुद को आत्मा समझना है। अगर आत्म दृष्टि से एक दो को देखेंगे तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हम आत्माएं सभी एक सरीखी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, मस्तक में स्थित होकर कर्म करते हैं। शरीर एक मोटर कार के समान है, आत्मा इसकी ड्राइवर है। एक ड्राइवर 24 घंटा मोटर कार चलाता है, परंतु अपने आप को कभी भी मोटर नहीं समझता है। मोटर से अलग ड्राइवर है, ड्राइवर का खान पान अलग है, मोटर को पेट्रोल देते हैं या डीजल देते हैं। इसी प्रकार भल दिन रात हम इस शरीर में रहते हैं, शरीर द्वारा कर्म करते हैं, पर हम शरीर रूपी मोटर नहीं हैं, हम चैतन्य शक्ति आत्मा ड्राइवर के समान हैं। इस शरीर को हवा पानी खुराक चाहिए, चैतन्य शक्ति आत्मा को सद्ज्ञान चाहिए, सद्गुण चाहिए, सद्कर्म चाहिए, जिससे ही आत्मा का विकास होता है। मकान और मालिक का उदाहरण दिया है कि शरीर एक मकान है, आत्मा मालिक है। इस हॉल में हम सब बैठे हैं, पर हम अपने को हॉल समझते नहीं हैं। हॉल अलग है, हम आत्मा अपने को इसका मालिक समझते हैं। हम इस कुर्सी सोफा पर आप सब हम बैठे हैं, पर अपने को कुर्सी सोफा नहीं समझते हैं। मेरा सोफा है, मेरी कुर्सी है, मैं कुर्सी सोफा नहीं हूं। अगर हम कुर्सी से सोफा से अटैच हो जाएं और उठ के चलकर जाना चाहे तो हम जा सकते हैं कि मुश्किल होगा। जैसे ही हम कुर्सी से सोफा से अलग हो जाते हैं तो हम इजीली जा सकते हैं। हमारा जीवन बोझ इसलिए बन गया है कि हम अपनी प्रवृत्ति से, परिवार से, नौकरी धंधे से अटैच हो गए हैं। जितना हम डिटैच रहेंगे, अनासक्त रहेंगे, तो हम लाइट रहेंगे और आराम से जीवन जी सकेंगे। नीचे एक्टर और ड्रेस का उदाहरण दिया है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हैं। वैरायटी ड्रेस पहनकर वैरायटी हम अपना पार्ट प्ले करते हैं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारी ड्रेस है। हम माता पिता बहन बेटी नहीं हैं, ये हमारा रोल है इस जन्म में जो मिला है वो हम प्ले करते हैं। अब अमिताभ बच्चन कुली फिल्म में कुली का रोल प्ले करता है, इससे हम थोड़ी कहेंगे कि अमिताभ बच्चन कुली है। खिलौना फिल्म में संजय पागल का रोल प्ले करता है, इससे वो संजय जरीवाला वो पागल नहीं हो जाता है। ये हीरो एक्टर हैं, हर एक वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। वो रोल्स नहीं हैं, वो ड्रेस नहीं है, परंतु वो एक्टर हैं इस फिल्म जग ये वर्ल्ड ड्रामा में हम आत्मा अविनाशी एक्टर हैं। अभी अभी आप माता पिता के सामने हैं तो आप बेटा और बेटी के रोल में हैं, पति और पत्नी एक दो के सामने हैं पति पत्नी के रोल में हैं, अपनी संतान के सामने हैं आप खुद माता पिता के रोल में हैं, समाज में जाते हैं आप एक सामाजिक प्राणी हैं, एक नागरिक है। ऑफिस में धंधे में आप जाते हैं वहाँ आप बॉस हैं, व्यापारी हैं। तो ये वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं, न कि हम ये हैं। हम आत्मा हैं, शरीर हमारी ड्रेस है, और वैरायटी रोल्स डॉक्टर का, इंजीनियर का और सीए का, ये रोल हम प्ले करते हैं। व्यापारी शिक्षक का, पर मैं शिक्षक मैं व्यापारी नहीं हूँ, ये हमारे रोल्स हैं। नीचे रथ और रथवान अथवा रथी का उदाहरण दिया है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं और उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं तो हम कहते हैं अर्थी चली। अरथी माना जिसमें रथी आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को हम कहते हैं अर्थी चली। आत्मा एक पंछी के समान है, शरीर पिंजर के समान है, आत्म पंछी कहा जाता है। आत्मा को हंस कहा जाता है, वो शरीर छोड़ के पिंजर से निकल जाती है, शरीर को पिंजर कहा जाता है। इस प्रकार ये शरीर और आत्मा का कंपैरिजन है। हमें भल देखने में शरीर आता है, परंतु खुद को आत्मा समझना है। जैसे शरीर पांच कर्मेंद्रियों का बना हुआ पुतला है, ऐसे आत्मा शक्ति है, वो सूक्ष्म है। आत्मा की तीन मुख्य शक्ति है, मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। मन बुद्धि संस्कार का चैतन्य समूह उसको आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि आत्मा से अलग प्रकृति की शक्ति नहीं है, आत्मा की चैतन्यता ही मन और बुद्धि है। मन आत्मा की विचार शक्ति को कहा जाता है। आत्मा जब थिंकिंग पावर को यूज करती है अब तब उसको मन कहा जाता है। मन कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है, आत्मा की विचार शक्ति को मन कहा जाता है। हमें मन के अंदर अनेक विचार आते हैं, आवश्यक चिंतन भी हम करते हैं तो अनावश्यक व्यर्थ तेरी मेरी भी करते हैं। हम पॉजिटिव भी सोचते हैं तो नेगेटिव भी सोचते हैं। मन अनेक विचार चलते रहते हैं। आत्मा की संकल्प शक्ति, मनन शक्ति, विचार शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, योजना, आइडियाज क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। इसलिए हम कहते हैं मेरा मन शांत नहीं, मैं मन शांत नहीं हूं, मैं मन चंचल हूं, ऐसा नहीं कहते हैं। मेरा मन कहते हैं हमारा मीन्स आत्मा का मन पर अधिकार है। हम इसलिए कहते हैं हम चाहे तो मन चंगा है तो कठोती में ही गंगा है। इस प्रकार हम चाहे मन जीत जगत जीत बन सकते हैं, परंतु जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, हम कहते हैं मेरा मन चंचल है, भटकता है, बंदर मिसल है। परंतु मन नहीं, आत्मा ही चंचल बन गई है, इसलिए हमें अनेक विचार आते हैं। तो अब हमें इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा मन को एकाग्र करना है, शुद्ध करना है। करना चाहेंगे कौन कौन अपने मन को एकाग्र शुद्ध करना चाहते? बहुत अच्छा। तो राजयोग इसलिए ही है कि हम मन को शांत करें, आत्मचिंतन का अभ्यास करें और हम स्व के प्रति केंद्रित हो जाएं। मन में अनेक विचार आते हैं पर सभी विचार कर्म में नहीं आते हैं। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है, परंतु आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पतित हो गई है, कमजोर हो गई है। इसलिए हम निर्णय करते हैं परंतु उस अनुसार चल नहीं पाते हैं। हम निर्णय करते हैं कि आज बिल्कुल शांत रहना है, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, स्वभाव ऐसा है, गुस्सा आ जाता है, परंतु हम शक्तिशाली दृढ़ता से निर्णय करें तो जरूर बुद्धि के निर्णय अनुसार शांत रह सकते हैं। आत्मा बुद्धि को शुद्ध बनाना चाहती है, शक्तिशाली बनाना चाहती है, और अगर हम बुद्धि को दिव्यकरण करना चाहते हैं तो राजयोग द्वारा बुद्धि शुद्ध बनती है, शक्तिशाली बनती है और दिव्य बनती है। और यूनिवर्सिटीज में जो कुछ आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इससे बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, परंतु ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, इस ज्ञान योग की पढ़ाई से आप अपनी बुद्धि को डिविनाइज कर सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं, अपने अंदर दैवी गुण और आत्मशक्तियों का विकास कर सकते हैं। बुद्धि से निर्णय करने के बाद जो कुछ हम कर्म करते हैं, उस कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में संचित होता है, रिकॉर्ड होता है। इस संचित कर्म के प्रभाव को, कर्मों के इस रिकॉर्ड को ही सब कॉन्शियस कहा जाता है, स्वभाव संस्कार कहा जाता है, हैबिट्स कहा जाता है, जो आत्मा में संचित होती हैं। अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं वो संस्कार बनते हैं। विचार कर्म का बीज है, कर्म का प्रभाव संस्कार बनता है। और सब जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती है, परंतु क्या साथ ले जाती है, संस्कार को साथ ले जाती है। जैसे संस्कार, ऐसी ही आत्मा की गति होती है, पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति हमें प्राप्त होती है। अच्छे कर्मों से बने हुए आत्मा ने सत कर्म किए हैं तो सदगति होती है, उनका सचरित्रवान शाहूकार संस्कारी सुसंस्कारी परिवार में जन्म होता है, पुनः ऐसी ही जन्म स्थिति प्राप्त होती है। अगर चोरी ठगी दंभ लुटपाट की है, दूसरे को दुख दिया है, तो हमारा जन्म चरित्रहीन परिवार में, गरीब परिवार में होता है और ऐसी ही स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो आत्मा पुनः संस्कार अनुसार वही विचार बार बार आते हैं और वही कर्म करने की इच्छा होती है, अर्ज होती है। शराब पीने की, व्यसन करने की, जुआरी बनने की आदत पड़ जाती है, तो भल सिगरेट पैकेट पर लिखा हुआ भी है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ, आपके स्वास्थ्य को ये नहीं असर, अरे नहीं स्वास्थ्य के लिए ठीक है, वो तबीयत बिगाड़ता है। तो हमारे संस्कार ऐसे ही फिर बार बार इच्छा विचार होती है, तो ये विचार बुद्धि निर्णय उससे बने हुए संस्कार और संस्कार अनुसार फिर विचार आते हैं, ये इनर साइकल है। अब हमारे ओरिजिनल संस्कार के बारे में हम समझेंगे, हमें जीवन में क्या चाहिए। हमें जीवन में शांति चाहिए, न कि अशांति। हमें जीवन में सुख चाहिए, न कि दुख। हम सुख के लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उससे धन कमाते हैं, धन से सुविधाएं होती हैं, सुख का एहसास होता है। हमें जीवन में आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। तो देखो, हमें जो चाहिए वो क्या हमें मिला है? अब तक के जीवन में हमें नहीं मिला है। हमें भौतिक सुख मिला है, धन साधन मिले हैं, हम इससे सुख मानते हैं, परंतु ये आंतरिक शांति, सुख, प्रेम, आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती है। अगर आपको थोड़े समय के लिए सुख चाहिए तो आप गीत सुनते हैं, 3-4 घंटे के लिए सुख चाहिए आप फिल्म देखते हैं, आप अच्छा भोजन खाते हैं। अगर आपको 6-8 घंटे का, 1-2 दिन का सुख चाहिए तो आप लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं, घूमने जाते हैं। परंतु अगर जीवन में सदा काल के सुख आनंद चाहिए तो आप क्या करें? योगी बने, पवित्र बने। भोगी बनने से तो ये हालत हुई है, हमारा अशांत जीवन बना है, और जहां शांति है वहां सुख नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है, वो चले जाते हैं। इसलिए शांति, मैं स्वरूप हूं, मैं आत्मा ही शांति हूं, मैं ही शांत स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म ही शांति है। ये भूल जाने से, उसमें स्थित नहीं होने से हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, तन मन की अनेक बीमारियां जीवन में आ गई हैं। स्वस्थ कहते हैं माना स्व में स्थित हो जाओ, स्व माना मैं आत्मा हूं। अगर स्व में स्थित हो जाएंगे तो हिल धाई सेल्फ माना खुद को स्वस्थ बना सकेंगे। अगर सुख का अनुभव करना है तो जीवन में प्रेम का अनुभव करो। जहां सत्य ज्ञान है वहां पवित्रता है। सत्य ज्ञान पवित्रता लाता है, इसलिए हम गाते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें अज्ञान अंधकार से सत्य प्रकाश ज्ञान की ओर ले चलो। असतो मा सतगमय, असत्य से सत्य की ओर हमें ले चलो। तो इससे ही पवित्रता आती है। कर्मेंद्रियां याद के बल से, योग बल से शुद्ध और शीतल बनती हैं। तब हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद होता है। सुख से जब आंतरिक सुख है तो आनंद की महसूसता हमें होती है। जीवन में आनंद, प्रसन्नता, खुशी रहती। इसलिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, देवी देवताओं के चेहरे सदा प्रसन्न दिखाए जाते। इतने वस्त्र अलंकार आभूषण से सज्ज है देवी देवताएं, परंतु उनका चेहरा सदा संतुष्ट दिखता है और प्रसन्नता नजर आती है, क्योंकि आंतरिक पवित्रता से प्रेम और शांति आते हैं। तब हमें सुख और आनंद महसूस होते हैं। सत्य ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति और प्रेम होता है। हमारे पारिवारिक रिश्ते भी पवित्र बनते हैं। और शांति और प्रेम जहाँ है वहाँ सुख और आनंद का अनुभव होता है। और तब हम शक्तिशाली आत्मा कहे जाते हैं। तो ये हैं हमारे मूल 7 गुण, इनेट क्वालिटीज। इसलिए आत्मस्थ होने की जरूरत है। जैसे ही हम आत्म अभिमानी बनेंगे, आत्मभान का अभ्यास करेंगे, इतने ये गुण इमर्ज होंगे जो हमारे अंदर समाये हुए ही हैं। देह अभिमान के कारण ये मर्ज हो गए हैं और देह अभिमान को ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, इन विकारों का जन्म देह अभिमान से होता है। अब हमें आत्मभिमानी बनना है। अब हम ये समझेंगे कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। हम कहते हैं ना, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पर कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, वो हम नहीं जानते हैं। हम इस दुनिया को कहते हैं भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ भौतिक जगत है। इसलिए आत्मा इस दुनिया में आकर प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है, इसलिए इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये वर्क प्लेस है, ये हमारा घर नहीं है। प्रकृति के पांच तत्वों से पार सूक्ष्म जगत है, जहां तीन आकारी सूक्ष्माकारी देवताएं रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन त्रिदेव रचयिता शिव परमात्मा को इसलिए हम त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। और यादगार भक्ति में भी शिवलिंग पर त्रिपुंड करते हैं और ऊपर बिंदी करते हैं। ये निशानी है कि ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा त्रिदेव की रचना करते हैं और उनके द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य कराते हैं। पांच तत्वों से भी पार इस आकारी जगत से, जो एक साक्षात्कार का जगत है, उससे भी परे छठवें तत्व को अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व कहते हैं। इस ब्रह्म तत्व में आप देखिए, सबसे ऊपर आत्माओं से भी ऊपर, इसलिए परमात्मा को कहते हैं, वो सातवें आसमान में रहते हैं। छठा तत्व अखंड लाल ज्योतिर्मय तत्व और सभी आत्माओं के भी ऊपर ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा रहते हैं। और हम आत्माएं भी इस अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म लोक है, परंतु ब्रह्म भगवान नहीं है। ब्रह्मास्मि हम अपने को कहते हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, ये सब गलत है। ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म लोक है, जिसमें हम बिंदु स्वरूप आत्माएं रहती हैं और परम आत्मा भी उसमें ही रहती है। तो ये हमारा असली घर है। ब्रह्म लोक से नीचे आसमानी रंग से बताया है, वो कर्म क्षेत्र है, साकार मनुष्य लोक है, और सारी भौतिक प्राप्ति इस दुनिया से हम कर सकते हैं। पर आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो भौतिक कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकती। देह के मित्र संबंधी भी स्मशान तक हमें छोड़ने आते हैं, लेकिन आत्मा के साथ उनकी आगे की जर्नी आत्मा अपने संस्कार अनुसार करती है। इसलिए कहते हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। लेकिन इस ज्ञान के अनुसार हम कर्म का हिसाब किताब लेकर आते हैं और अब इस ज्ञान अनुसार जितना हम योग करेंगे, सेवा करेंगे, दिव्य गुणों की जीवन में धारणा करेंगे, इससे हम सत कर्मों का भाग्य लेकर जाएंगे। तो हमारा असली घर परम धाम है। परम धाम से इस दुनिया में हम आते हैं, कर्म करते हैं, ये कर्म क्षेत्र है। ये है आत्मा का सही परिचय जो स्वयं परमात्मा पिता ने दिया है। वो परिचय आज मैंने निमित्त बनकर आप सबको दिया है। खुश है सभी? अब हम कुछ क्षणों के लिए आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, अपना जो भी हैंडबैग लाए हैं, मोबाइल लाए हैं, वाटर बॉटल लाए हैं, जो कुछ भी आपके साथ लाए हैं वो नीचे रख दीजिए। डायरी पेन नीचे रख दीजिए, वो कोई भी अटैचमेंट अपने साथ नहीं रखिए। या गले में हैंडबैग लटका के या मोबाइल रख के नहीं बैठिए। सभी एक दो से अलग अलग होकर बैठिए। अब तो नीचे भी बैठ सकते हैं, जो बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाए। वास्तव में योग हमें आराम से बैठना है, अपना कमर सीधी रख कर बैठना है। जितना आप स्ट्रेट बैठेंगे आपका चिंतन का प्रभाव शरीर के अंगों पर जाएगा, जो शरीर को भी तंदुरुस्त बनाएगा। तो मन दुरुस्त तो तन भी दुरुस्त। इस फिलॉसफी को आप अपनाएंगे, ज्ञान से मन को ठीक करेंगे और ठीक मन को परमात्मा की याद में लगाएंगे। आज हम सिर्फ आत्मचिंतन करेंगे, कल आप परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे। आज दूसरे लेसन में परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे, तब आप योग कर सकेंगे। आंखें खुली रख कर बैठें, जैसा आपको अनुकूल हो। राजयोग में हम आंखें नॉर्मल रखते हैं, आंखें फाड़ के नहीं बैठना है, आंखें बंद करके भी नहीं रखना है। जैसे हम बातचीत में सामान्य रखते हैं, ऐसे आप अपनी आंखों को नॉर्मल रख के बैठिए। मैं आपको गाइड करूंगी कमेंट्री के द्वारा, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है। आपको मन ही मन, मैं जो विचार दूं वो विचार को रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझते हुए रियलाइज करना है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का पहला लेसन है, हम मन ही मन रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। आत्मा स्थिति में स्थित हो जाए, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं एक स्पिरिचुअल लाइट ऑफ और स्पिरिचुअल माइट की पॉइंट हूं। शरीर एक साधन है जो मैंने कर्म करने के लिए धारण किया है। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मैं आत्मा इस विश्व नाटक की एक्टर हूं। शरीर मेरी ड्रेस है, शरीर रूपी ड्रेस पहनकर मैं वैरायटी रोल्स प्ले करती हूं। मैं आंखों द्वारा देखती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं। परंतु मैं ये मुख नहीं हूं, कान नहीं हूं, आंख नहीं हूं। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मेरा असली घर इन पांच तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से भी परे जो छठवां अखंड लाल ज्योतिर्मय तत्व है, उस ब्रह्म तत्व में मैं रहती हूं। हम सभी आत्माएं एक ही परम धाम के निवासी हैं। हम शांति और पवित्रता के धर्म में यहां स्थित रहती हैं। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं सत्य हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, शांत और शक्तिशाली हूँ। अब दुनिया की कोई भी परिस्थिति माया का कोई भी विघ्न संसार की कोई समस्या मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं शुद्ध, पवित्र और शांत आत्मा हूँ। शांति और प्रेम से हमारे जीवन में आंतरिक सुख अनुभव होगा, हमें अंतर में आनंद रहेगा। ओम शांति।
ओम शांति। एक हाथ के ताली से, जब आप साइलेंस में होते हो योग करा रहे हैं दीदिया, तो सभी हम एक हाथ के ताली से दीदी का हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं।